श्री राम नवमी की जय, श्री श्री राधिकृष्ण कृष्णम की जय, श्यामवीर भक्त बिंद की जय, नित्य गोपाल ब्रह्मानंद हरि हरि बोल। ऑल ग्लोरी टू सिमरन वोरीज, ऑल ग्लोरी टू सिमरन वोरीज, ऑल ग्लोरी टू सिमरन वोरीज, ऑल ग्लोरी टू श्री गुरु ग्रंथ गोपाल ब्रह्मानंद। सो इन ऑर्डर, इन ऑनर ऑफ लॉर्ड राम, राम जयंती कमिंग अप वेरी सून, we're reading from the 9th canto, 10th chapter, starting with text number 21.
तो जैसे कि अभी राम नवमी आने वाली है और हम भगवान राम के गुणगान में नवे स्कंद के 10वें अध्याय से 21 और 22 श्लोक पर आज चर्चा करेंगे।
I'll read the 21st verse Sanskrit and translation.
21वें श्लोक का अनुपात उसमें तात्पर्य नहीं है।
दक्षापते स्वबला नास्ति अवेक्ष वृष्टा Translation. Thereafter, when Ravana, the king of the Rakshasas, observed that his soldiers had been lost, he was extremely angry.
अनुवाद। तत्पश्चात जब राक्षस राज रावण ने देखा कि उसके सारे सैनिक मारे जा चुके हैं, तो वह अत्यंत क्रुद्ध हुआ।
Thus he entered, mounted his airplane, which was decorated with flowers, and proceeded towards Lord Ramachandra, who sat on the effulgent chariot brought by Matali, the chariot driver of Indra.
अतः वह अपने विमान में सवार हुआ जो फूलों से सजाया हुआ था और रामचंद्र जी की ओर बढ़ा जो इंद्र के सारथी मातली द्वारा लाए गए तेजस्वी रथ पर आसीन थे।
Then Ravana struck Lord Ramachandra with sharp arrows.
तब रावण ने भगवान रामचंद्र पर तीक्ष्ण बाणों की वर्षा की।
Text 22. रामस्तमाह पुरुषार पुरीशयन्नः
रामस्तमाह पुरुषात पुरीशयन्नः
रामस्तमाह पुरुषार पुरीशयन्नः
रामस्तमाह पुरुषाद पुरुषे
कंठस्माक्षराम असतक पुरिता स्वराते
कांता समक्षम असता पहिता श्वत्ते
कंता समक्षम असत्पारित स्वराते
कांता समक्षम असता पहिता श्वत्ते
जगता त्रपस्या स्वलम आज जोगुप सितास्या
त्यक्ता त्रपस्य फलमद्य जगुप्सितस्य
यचामि काला इवकर्तर अलंग्या वीरहा
यचामि काल इवकर्तर अलंग्या वीरह।
Next chapter.
रामस्तमाह पुरुषाद पुरीशयन्नः कांता समक्षम सता पहिताश्ववत्ते त्यक्ता त्रपस्य फलमध्य जुगुप्सितस्य यच्छामि काल इव कर्तुर लंघ्य वीर्यः
Translation. Lord Ramachandra said to Ravana, "You are the most abominable of the man-eaters. Indeed, you are like their stool. You resemble a dog, for as a dog steals edibles from the kitchen in the absence of his householder, in my absence you kidnap my wife Sita Devi."
अनुवाद। भगवान रामचंद्र ने रावण से कहा, तुम मानव भक्षियों में अत्यंत गर्हित हो, निसंदेह तुम उनकी विष्ठा तुल्य हो, तुम कुत्ते के समान हो, क्योंकि वह घर के मालिक के न होने पर रसोई से खाने की वस्तु चुरा लेता है। तुमने मेरी अनुपस्थिति में मेरी पत्नी सीता देवी का अपहरण किया है।
In my absence, you kidnapped my wife Sita Devi. Therefore, as Yamaraj punishes sinful men, I shall also punish you. You are the most abominable, sinful, and shameless today. Therefore, I, whose attempt never fails, shall punish you.
तुमने मेरी अनुपस्थिति में मेरी पत्नी सीता देवी का अपहरण किया है। इसलिए जिस तरह यमराज पापी व्यक्तियों को दंड देता है, उसी तरह मैं भी तुम्हें दंड दूंगा। तुम अत्यंत नीच पापी तथा निर्लज हो, अतएव आज मैं तुम्हें दंड दूंगा, क्योंकि मेरा वार कभी खाली नहीं जाता।
Purport by Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai.
Jai.
Yacha daivat param balam. No one can surpass the strength of the transcendence. Ravana was so sinful and shameless that he did not know what the result would be of kidnapping Mother Sita, the pleasure potency of Ramachandra. This is the disqualification of the Rakshasas. Asutyam aprasitam tejagad avur anishvaram. The Rakshasas are unaware that the Supreme Lord is the ruler of the creation. They think that everything has come about by chance or accident, and that there is no ruler, king, or controller. Therefore, the Rakshasas act independently, as they like, going even so far as kidnap the goddess of fortune. The policy of Ravanas is extremely dangerous for the materialist. Indeed, it brings ruin to the materialistic civilization. Nonetheless, because atheists are rakshasas, they dare to do things that are most abominable, and thus they are punished without fail. Religion consists of the orders of the Supreme Lord, and one who carries out these orders is religious. One who fails to carry out the Lord's orders is irreligious, and he is punished.
तात्पर्य, न च दैवात परम बलम, कोई भावी बल दिव्य शक्ति से पार नहीं पा सकता। रावण इतना पापी तथा निर्लज था कि उसे इसका पता ही नहीं था कि रामचंद्र की लादनी शक्ति माता सीता का अपहरण करने का क्या फल होगा। राक्षसों का यही अवगुण है, असत्यम अप्रतिष्ठम ते जगत आहुर अनीश्वरम। राक्षसों को इसका ज्ञान ही नहीं है कि भगवान सृष्टि के शासक हैं। वे सोचते हैं कि सब कुछ संयोगवश उत्पन्न हुआ है और उसका न तो कोई शासक या राजा है न नियंता। इसीलिए वे स्वतंत्र होकर स्वेच्छा से कर्म करते हैं और इस हद तक पहुंच जाते हैं कि लक्ष्मी जी तक का अपहरण कर बैठते हैं। रावण की यह नीति किसी भी भौतिकतावादी के लिए अत्यंत घातक है। निसंदेह है, इससे भौतिकतावादी सभ्यता का विनाश होता है। तो भी नास्तिक लोग राक्षस हैं, अतएव वे घृणित से घृणित कर्म करते हैं, जिसके लिए वे अवश्य ही दंडित होते हैं। धर्म भगवान के आदेशों से युक्त है, अतएव जो भी इन आदेशों का पालन करता है वही धर्मी है। जो भगवान के आदेशों का पालन नहीं करता वह अधर्मी है और उसे दंडित होना पड़ता है।
So here Ram is hurling or throwing some incredible insults at Ravana.
तो यहां पर भगवान राम रावण का बहुत ही अपमानजनक शब्दों के साथ में अपमान कर रहे हैं.
He says, "You're the most abominable of the man eaters."
तो भगवान कह रहे हैं तुम मानव भक्षियों में अत्यंत गर्हित हो.
Indeed, you are like their stool.
निसंदेह तुम उनकी विष्ठा तुल्य हो.
So this is a pretty low insult.
तो ये बहुत ही निम्न कोटि की आलोचना है.
Ravana is accustomed to being praised by everyone because even a crooked politician is praised if he has a lot of followers.
तो रावण को तो आदत थी कि उसका काफी उसकी बड़ाई की जाती थी, यहाँ तक कि एक राजनीतिज्ञ भी होता है जिसके कई सारे फॉलोअर्स अर्थात उसको उसके पीछे चलने वाले काफी लोग होते हैं, तो वो भी उसकी तारीफ करते हैं.
So no one in the whole universe could dare talk to Ravana like this.
तो कोई भी पूरे ब्रह्मांड में ऐसा नहीं था जो इस तरह से रावण से बात करने की हिम्मत रखता हो.
But Ram is fearless.
But Ram.
He is fearless.
लेकिन भगवान राम निर्भीक हैं.
He is not afraid of some kind of bad reaction from Ravana.
तो वे भयभीत नहीं है कि उन्हें रावण से कोई वापस से प्रतिक्रिया मिलेगी.
Then he further insults him. He says, "You're like, you resemble a dog, for a dog steals edibles from a kitchen in the absence of the householder."
फिर भगवान राम आगे आलोचना करते हुए कहते हैं कि तुम कुत्ते के समान हो, क्योंकि वह घर के मालिक के न होने पर रसोई से खाने की वस्तु चुरा लेता है.
We've seen how dogs will do this kind of thing.
तो हम देखते भी हैं कि किस प्रकार कुत्ते इस तरह का कार्य करते हैं.
So first he's calling him. First Rama is saying he's like the stool of the Rakshasas. That's pretty low.
तो पहले भगवान राम कहते हैं कि आप राक्षसों की विष्ठा के तुल्य हो.
And then he's saying he's just like a dog.
और फिर उसके बाद वो कह रहे हैं कि आप तुम कुत्ते के समान हो.
So it's appropriate the Supreme Lord can chastise anyone.
तो ये सही भी है क्योंकि भगवान जो परम नियंता हैं वे किसी को भी दंडित.
Krishna says that he is the rod of chastisement.
तो भगवान किसी को भी दंडित कर सकते हैं, किसी की भी आलोचना कर सकते हैं, जैसे कि भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि वो सबसे बड़े दंड देने वाले.
We understand whenever we are chastised, wherever the source may be, it doesn't matter.
तो जैसा कि हम देखते हैं कि जब भी हमें दंडित किया जाता है तो कहीं से भी कोई भी स्रोत हो,
Our meditation always should be sarvakarna karnam.
लेकिन हमारी हमेशा हमारा ध्यान रहना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण ही सभी कारणों के कारण हैं.
Krishna is the cause of all causes.
कृष्ण ही सभी कारणों के कारण हैं.
So we are, if we are chastised by anyone,
तो हम अगर किसी के द्वारा भी अगर हमें दंडित किया जाए या आलोचना सुनने को मिले,
We should understand that Krishna is behind it.
तो हमें समझना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण इसके पीछे हैं.
Especially anyone that chants Hare Krishna,
विशेषकर जो भी हरे कृष्णा जप करते हैं,
has succeeded in attaining the attention of the Supreme Lord.
तो वे सभी भगवान की ध्यान को आकर्षित करने में सफल हुए हैं.
What's your name, Prabhu? Pitamba Govindadas. So Krishna's listening, you know, I have hearing problem, old age, I have to wear spectacles, I have to wear earphones.
जैसा कि बुढ़ापे में मुझे चश्मा लगाना पड़ता है, सुनने की दिक्कत होती है.
Krishna has no hearing problem.
लेकिन भगवान को सुनने की कोई तकलीफ नहीं है.
It is said in the Shastra that his eyes and ears of the Supreme Lord are everywhere.
ऐसा शास्त्र में वर्णन आता है कि भगवान के आंखें और भगवान के हाथ सर्वत्र हैं.
So if you are just trying to chant Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, it catches Krishna's attention immediately.
तो जैसे ही आप जब प्रारंभ करते हैं हरे कृष्ण महामंत्र का, तो भगवान का ध्यान आकर्षित हो जाता है.
There's not even any time delay.
और वहां कुछ सेकंड का भी देरी नहीं होती है.
An ordinary person, even if you're talking to a devotee, sometimes you have to try several times to get attention.
तो एक भक्त से जब आप बात कर रहे होंगे तो उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए आपको कई बार उन्हें कहना पड़ता है, लेकिन भगवान के साथ आपको कहना पड़ता है कि हरि बोल प्रभु, आप सुन रहे हो या नहीं सुन रहे हो।
Sometimes you have to scold them because they don't listen.
कई बार आपको उन्हें डांटना भी पड़ता है क्योंकि वो सुनते नहीं है।
Krishna is not like that.
लेकिन भगवान ऐसे नहीं है, भगवान तुरंत सुन लेते
हैं। He hears first time every time.
भगवान हर समय और पहली बार में ही सुन लेते हैं।
As soon as you say the name of Krishna,
जैसे ही आप कृष्ण भगवान कृष्ण का नाम लेते हैं,
immediately he reacts.
तुरंत ही भगवान प्रतिक्रिया करते हैं।
God is not inert.
भगवान कोई स्थूल चीज नहीं है।
Neither is he impersonal.
और ना ही वो निर्विशेष हैं।
We may have some impersonal tendencies even though we're trying to become devotees.
हालांकि हम में कुछ निर्विशेषवादी भावनाएं हो सकती हैं, भले हम भक्त बनने का प्रयास कर रहे हैं।
Not like that.
लेकिन भगवान श्री कृष्ण ऐसे नहीं हैं।
His immediate reaction is, "Oh, who is that who is chanting my name?"
तो भगवान कृष्ण का तुरंत प्रतिक्रिया होता है, "Oh, ये कौन है जो मेरा नाम ले रहा है?"
"Oh, it's Pitambara Govinda. Very good."
तो भगवान ध्यान देते हैं, ओ ये तो पीताम्बर गोविंद है, वेरी गुड,
गो ऑन चेंजिंग, गो ऑन गो ऑन।
और भगवान तब कहते हैं कि हाँ आप मेरा नाम लेते रहो, मेरा नाम लेते रहो।
Just like the deities are not impersonal, they're not inert, they are not actually marble, it's a costume.
तो जैसा कि अर्चा विग्रह भी कोई मूर्ति नहीं है, वो स्थूल नहीं है, निर्विशेष नहीं है,
it's a trick.
ये एक ट्रिक है।
Because we can't see God, the form of God is tribhanga form. We can't see.
क्योंकि हम भगवान का त्रिभंग दिव्य स्वरूप नहीं देख सकते।
With our defective fleshy eyeball.
हमारे इस चर्म चक्षुओं से जो कि जिनमें त्रुटि है।
The big defect of modern science is that they only want to go after what is tangible.
तो आधुनिक विज्ञान का ये दोष है कि जो उन्हें स्पष्ट होता है वही वो मानते हैं।
Tangible is actually a low level.
Tangible या जो चीज स्पष्ट जो इंद्रियों को दिख सके वो बहुत ही निम्न स्तर का है।
What you can touch, what you can smell, what you can see,
क्या आप
what
देख
you can hear, just with the gross material body.
तो इस स्थूल शरीर से जो हम अनुभव कर सकते हैं, जैसे हम क्या सुन सकते हैं, क्या सूंघ सकते हैं, क्या देख सकते हैं,
What's the credit in that?
इसमें क्या लाभ है?
You can't even tell me exactly what's going on two houses down the street.
तो आप मुझे यहाँ से ये भी नहीं बता सकते कि यहाँ से थोड़ी दूर पर गली में क्या हो रहा है।
Senses are so imperfect.
तो हमारी इंद्रियां इतनी त्रुटि है इन इंद्रियों में।
Modern science is all based on chasing after the imperfect senses.
तो जो आधुनिक विज्ञान है वो सिर्फ इन अपूर्ण इंद्रियों के द्वारा ही सब कुछ ज्ञान अर्जित करना चाहता है।
So they invent devices to try to improve their hearing capacity.
तो इसीलिए वो आधुनिक वैज्ञानिक ऐसे यंत्रों का आविष्कार करते हैं जिससे कि हमारी सुनने की क्षमता और बढ़ सके।
All right, so they invented this earphone that improves my hearing capacity. That's fine.
तो उन्होंने एक मेरे ईयरफोन का आविष्कार किया जिससे कि मेरे सुनने की क्षमता बढ़ सकी।
But more nonsensical than that is they spend hundreds of billions of dollars.
तो इससे भी ज्यादा जो निंदनीय कार्य है कि वो करोड़ों डॉलर खर्च करते हैं
डिजाइनिंग एंड क्रिएटिंग सुपर साउंड सिस्टम्स।
सुपर साउंड सिस्टम्स बनाने के लिए वो इतने करोड़ों डॉलर खर्च करते हैं।
Big solar, big dishes, you know, big like a solar dish only for catching sound.
तो जो ध्वनि को पकड़ने के लिए वो इतने बड़े-बड़े डिस्क लगाते हैं।
And they pay some so-called scientists $100,000 a year.
और वो तथाकथित वैज्ञानिकों को इतने करोड़ रुपए देते हैं, डॉलर्स देते हैं।
To sit there with the earphones on.
ताकि वो अपने ईयरफोन को ऑन करके वहां बैठे
and listen to the sounds of the universe.
और वो ब्रह्मांड में क्या ध्वनि चल रही है उसे सुन सकें, इसके लिए वैज्ञानिक।
Not for intelligent program.
तो ये कोई बुद्धिमता का कार्य नहीं है, कोई ऐसा अच्छा
so
कार्य
they hear, you know?
और वो वैज्ञानिक क्या सुनते हैं?
Crackle, 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 squeeze, squeeze, crackle, crackle, crackle. It is not very advanced.
और वो ब्रह्मांड की ध्वनि, जैसे महाराज बता रहे हैं, ऐसी आवाजें उन वैज्ञानिकों को सुनने को मिलती हैं।
The Vaishnav system of hearing is unlimitedly superior.
और वैष्णवों का जो जो माध्यम है सुनने का, वो इससे अनगिनत रूप से उच्च है।
Because we don't depend on the imperfect senses.
क्योंकि हम इन अपूर्ण इंद्रियों पर निर्भर नहीं रहते।
We're hearing from self-realized souls.
हम आत्म साक्षात्कार किए हुए जीवात्माओं से, शुद्ध आत्माओं से सुनते हैं, जो कि प्रतिनिधि हैं एक अन्य आत्म साक्षात्कार किए हुए।
Revealed knowledge. It's not book knowledge. It's not speculation.
और यह ज्ञान प्रकाशित होता है, यह कोई किताबों का ज्ञान नहीं है, यह हृदय में प्रकाशित होता है।
It's solid.
और यह बहुत ही ठोस होता है।
Real knowledge is knowledge that's not created by the perception of the senses.
वास्तविक ज्ञान इंद्रियों के इंद्रियों से नहीं अर्जित किया जाता।
So how far we can't see very far with our fleshly eyeball.
हम हमारे इन चर्म चक्षुओं से ज्यादा दूर नहीं देख सकते।
So they've invented high power telescopes to try to see further.
तो इसलिए वैज्ञानिकों ने, आधुनिक वैज्ञानिकों ने एक टेलीस्कोप का आविष्कार किया जिससे दूर तक देखा जा सके।
Billions of dollars they spend on equipment for looking into outer space.
और वो करोड़ों डॉलर खर्च करते हैं ताकि ब्रह्मांड में, अंतरिक्ष में क्या हो रहा है उसे देख सके।
And they get excited if they hear a little squeak.
और अगर उन्हें कुछ भी सुनने को मिलता है तो वो बहुत ही ज्यादा उत्साहित होते हैं।
What are they wasting billions of dollars on?
और वो इस छोटी सी चीज को देखने, सुनने के लिए इतने करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं।
They're trying to figure out, is there life on other planets?
वे वैज्ञानिक, आधुनिक वैज्ञानिक, तथाकथित वैज्ञानिक ये ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं कि अन्य लोकों पर भी जीवन है।
Massive waste of money.
और वे इस पर बहुत बहुत ज्यादा रुपए खर्च करते हैं।
They can just hear from the Vedic literatures exactly what's going on other planets. All the details are there.
और वे बहुत ही सरल कार्य कर सकते थे कि वे वैदिक शास्त्रों से श्रवण करते कि अन्य ग्रहों पर क्या हो रहा है।
Vaspa, upper, middle, and lower planetary systems.
ओम भूर भूर भूयस्वः, तीनों जो उच्च लोक हैं और मध्य के और नीचे के लोक, तीनों के बारे में शास्त्रों में
जाते हैं। Lower planets is there. Bhagavatam gives a summary of the lifestyle on lower planets.
तो भागवतम एक संक्षिप्त वर्णन देता है कि नीचे के लोकों में क्या जीवन शैली है।
There are some heavenly lower planets that are more opulent than even than the Indra's kingdom in the upper planets.
तो भागवतम में वर्णन आता है कि नीचे के कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनमें ऐश्वर्य इंद्र के लोक से भी, स्वर्ग से भी ज्यादा है।
But they are atheist.
लेकिन वे सभी नास्तिक हैं।
No religious practices.
कोई भी शास्त्रों की धार्मिक विधियों का पालन नहीं करते
हैं।
और वे अपने इंद्रियों का वहां भोग करते हैं।
Without any religion.
बिना किसी धर्म का पालन किए हुए।
Unlimited sense enjoyment.
असीमित इंद्रिय तृप्ति वहां इन निम्न लोकों में मिलती है।
And that, when that's finished, you're doomed.
और जैसे ही यह खत्म होता है तो आप समाप्त हो जाते हैं।
There's no past activities to promote you up or even to bring you back where you were. Your only place to go is down, lower, lower, down into hell.
और जैसे ही पुण्य कर्मों का घड़ा समाप्त होता है तो और नीचे ही नीचे के लोकों में जाने लग जाते हैं।
There's another planet where there are beautiful women.
और कई ऐसे भी लोक हैं जहां पर बहुत सुंदर स्त्रियां हैं।
You may consort with them.
आप वहां उनसे बातचीत कर सकते हो।
Have as much sensual activity as you like.
और आप कुछ इंद्रिय भोग भी वहां कर सकते हो।
In the end, they may kill you.
और अंत में वो आपको मार सकती हैं।
So the point is that depending on the gross material senses for knowledge is a fool's paradise.
तो इन भौतिक स्थूल इंद्रियों से जो ज्ञान अर्जित किया जाता है वो एक मूर्खों का स्वर्ग है।
We take the authority from the Vedas.
हम शास्त्रों की अथॉरिटी मानते हैं।
Prabhupada so many times quoted Shruti, Smriti, Puranadi.
पंच तो प्रभुपाद जैसे कई बार उद्धृत करते हैं श्रुति, स्मृति, पुराण आदि।
The Vedic literatures are the real authority of knowledge. There's no need to waste billions of dollars on foolish experiments.
तो वैदिक जो शास्त्र हैं वो ज्ञान की सही सही ज्ञान देने वाली हैं, तो इतने करोड़ों रुपए अरबों रुपए खर्च करने की आवश्यकता नहीं है.
We have described about the macro scale going up and looking out in the universe. They're looking for signs of life. They're listening for signs of life. They're hoping they can find something out there.
तो जैसा कि इसे मैक्रो साइंस कहा जाता है, स्थूल विज्ञान, कि बाहर के लोकों में जाकर के देखा जाए कि कहीं जीवन संभव है या नहीं.
On the micro scale, they're trying to find out what's going on the atomic level, subatomic level.
और माइक्रो लेवल पे, अर्थात बहुत ही सूक्ष्म विज्ञान की भी वो चर्चा करते हैं कि
so they have microscopes, electronic microscopes that are very powerful, so they can study portions of atoms.
तो परमाणु के स्तर पर जाकर के पढ़ने के लिए उनके पास इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप हैं.
For this they waste millions of dollars.
और इसके लिए भी वे करोड़ों रुपए खर्च करते हैं.
Read the chapter of Srimad Bhagavatam called The Calculation of Time According to the Atom.
और अगर उन्हें माइक्रो लेवल पे जानकारी चाहिए तो उन्हें भागवतम का वो अध्याय पढ़ना चाहिए जिसमें
the smallest time increment is described.
तो भागवतम के अध्याय, एक अध्याय तीसरे स्कंद में आता है जहां समय की गणना परमाणु के आधार पर की गई है.
The amount of time it takes for a ray of sunlight to cross a hexatom.
Hexatom. तो hexatom एक atom है जिसके जिसे अगर किरण जिसको पार करने में जितना समय लगाएगी वो सबसे सूक्ष्म समय है.
Hexatom is six atoms together.
Hexatom जो होता है उसमें छह परमाणु एक साथ होते हैं, तो उसे अगर एक सूरज की किरण जितनी देर में पार करेगी वो सबसे सूक्ष्म समय है.
That's the smallest unit of time.
तो वो सबसे समय की गणना की सबसे सूक्ष्म.
Keeps building up, and finally you come to seconds, the same as the modern way of calculating time.
तो इसी तरह से अगर आप ऊपर ऊपर बढ़ते जाएं समय की गणना में, तो जो आधुनिक विज्ञान जिस तरह से समय की गणना करता है वो समान है.
Various are more accurate because they speak of split seconds, split moments. Those increments of time are there.
तो वैदिक ज्ञान ज्यादा सही है क्योंकि वे सेकंड और क्षणों से भी कम के समय की बात करते हैं.
So why waste millions of dollars?
तो इसलिए इतने करोड़ों रुपए क्यों खर्च किए जाएं?
There are a few fortunate scientists who are beginning to understand that there is knowledge beyond the finite senses in the Vedas. A very small handful of scientists are beginning to understand this.
कुछ बहुत ही थोड़े से उंगलियों पर गिने जा सकने वाले वैज्ञानिक हैं जो कि इसे समझ रहे हैं कि भौतिक ज्ञान से भी ऊंचा ज्ञान, जो इंद्रियों से जो ज्ञान अर्जित किया जाता है उससे उच्च ज्ञान वेदों में है.
But first they have to give up the conception that man has come from monkeys.
लेकिन उससे पहले उन्हें यह उनकी धारणा छोड़नी पड़ेगी कि मनुष्य बंदरों से आया है.
Internet, I received one picture of an ape.
तो मैंने इंटरनेट पर एक एक फोटो देखा जिसमें एक एप की फोटो है.
A talking ape.
एक चिंपैंजी. एक बंदर की फोटो है.
A big, huge, giant ape.
तो वो बात भी करता है, बहुत ही विशाल एप है वो.
Really muscular.
और उसकी बहुत ज्यादा अच्छी मसल्स हैं.
The caption on the picture says, "Stop saying you're descended from us."
तो वो एप जो है वो कह रहा है कि आप लोग, वो उसमें एक फोटो में ये बना हुआ है कि एप कह रहा है कि आप लोग हम ये कहना बंद कर दो कि आप हमसे आए हो.
You people are just a bunch of rascals.
आप सिर्फ और सिर्फ धूर्त हो.
What is modern science all based on this conception?
और आधुनिक विज्ञान इसी धारणा पर आधारित है.
How far they can go.
तो इसलिए वो आधुनिक विज्ञान कितना आगे जा सकता है.
I don't know what they say now, but it used to be when I was in school many decades ago that they used to teach the only difference between man and monkeys was a thumb. Thumb.
तो जब मैं कुछ दशकों पूर्व स्कूल में था तो तब बताया जाता था कि ये जो अंगूठा है ये बंदरों में और मनुष्यों में एक समानता मिलती है.
Actually, the monkeys are very smart.
लेकिन बंदर बहुत स्मार्ट होते हैं.
One day, some years ago, I was in Vrindavan. I was watching. They had the wash basins along the wall at Krishna Balaram Mandir.
What?
Wash basin.
तो जैसा कि कृष्ण बलराम मंदिर में मैंने देखा वृंदावन में कि वहाँ पर प्लेटों को धोने के लिए वॉश बेसिन्स हैं.
I washed it, the monkey wanted a drink of water.
तो बंदर वहाँ से पानी पीना चाहता था.
So very skillfully, the monkey went and opened the tap.
तो बंदर ने बड़ी ही चतुराई से उस नल को खोल लिया.
And the water came out, and the monkey got a nice drink. Of course, the monkey didn't care about the waste of water, so he didn't bother to turn it off.
तो वृंदावन के बंदर भी जो नालियों में जो वेस्ट पानी होता है उसको नहीं चाहते हैं. वो बहुत ही चतुर था, उसने फ्रेश पानी पिया उस नल को खोल करके.
So much for the concept of animals of no consciousness.
तो जैसा कि कुछ लोग कहते हैं कि जानवरों में कोई चेतना नहीं होती है, लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि कितने चतुर. तो जैसा कि अभी एक नई मतलब वैज्ञानिक एक थ्योरी देते हैं कि बंदरों में पशुओं में कोई भी चेतना नहीं होती है.
For example, cows are very intelligent.
जैसा कि हम देखते हैं कि गाय भी बहुत बुद्धिमान होती है.
I was sent a video clip.
तो मुझे एक वीडियो मिला था, एक छोटा क्लिप.
Of a cow and a water pump.
एक गाय और एक वाटर पंप का.
The cow was so clever.
गाय इतनी चतुर थी.
She pushed down on the handle of the manual water pump.
तो उस गाय ने जो हैंड पंप का पंप जो हैंडल था उसको नीचे किया.
She pushed it up again with her nose.
और उसने अपनी गर्दन से फिर उससे ऊपर भी उठाया.
And then pushed it down again until the water came out.
और फिर उस हैंडल को वापस नीचे किया और फिर इस तरह से पानी आ गया.
This is pretty clever.
तो इससे पता लगता है कि गाय कितनी चतुर हैं.
Another video clip I saw.
और दूसरे एक वीडियो क्लिप में मैंने देखा.
A cow wanted to get out of the yard.
तो गाय जब अपने अस्तबल से बाहर आई.
So it went to the gate.
तो वो गेट पर गई.
Very skillfully, it lifted up the bar with the slider on it that closes the gate.
तो उसने बड़ी ही बुद्धिमता से जो कुंडी थी उसको खोला.
Using her nose, she simply lifted up and slid it sideways, so the gate opened very nicely.
और उसने अपने नाक से उस हैंडल को ऊपर किया और उसे फिर साइड में कर दिया और इससे गेट खुल गया.
So taking knowledge from persons who don't even accept that animals have intelligence is crazy.
तो ऐसे लोगों से जो कहते हैं कि पशुओं में कोई चेतना नहीं होती, बुद्धि नहीं होती, तो ऐसे लोगों से ज्ञान लेने से क्या लाभ है?
The bodily concept of life is doomed.
तो जो शारीरिक स्तर का जो जीवन है वो
everything based on the body and extension of the body has no future.
तो इसका कोई भविष्य नहीं है. अगर कोई सोचता है कि शरीर ही सब कुछ है या शरीर से जुड़ी हुई चीजें ही सब कुछ है.
Even the Christians say you can't take it with you.
जैसे कि कृष्ण भी कहते हैं कि आप अपने साथ कुछ नहीं ले जा सकते.
Of course they can't live by that.
They cannot?
They can't live by that.
और लेकिन भगवान की ये बात सुनने के बाद भी लोग इसके बिना नहीं रह सकते हैं.
There's two things, ज्ञान and विज्ञान.
तो जैसे कि दो चीजें हैं, ज्ञान और विज्ञान.
There's knowledge and the practical application.
तो एक है ज्ञान और दूसरा है उसे व्यवहारिक जीवन में उतारना.
So the ज्ञान is that you have money, you have family, you have car, you have nice house, but when you die, you can't take it with you. So that's knowledge.
तो ज्ञान ये है कि आपका परिवार है, आपके पास कार है, आपका शरीर है, लेकिन जब आप शरीर छोड़ेंगे, तो आप कुछ भी अपने साथ नहीं ले जा सकते.
But if they know this in theory, very few can apply it.
लेकिन अगर कई लोग इसे जानते भी हैं, इसे थियोरेटिकली जानते हैं, लेकिन इसे जीवन में उतार नहीं सकते. और जब ये ज्ञान जीवन में उतार लिया जाता है, जीवन में अपना लिया जाता है, तो उसे विज्ञान कहते हैं.
And those don't have even knowledge there in the Bhagavad Gita, Krishna says, Mayaya Pratigyan, whose knowledge is stolen by illusion.
तो और जिनको ये भी ज्ञान नहीं है कि वो शरीर नहीं है तो वो तो माया प्रहित ज्ञान है, तो उन्हें तो उनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है.
So Ravana was thinking he was undefeatable.
तो रावण भी सोच रहा था कि उसे कोई पराजित नहीं कर सकता.
Insanely puffed up.
और इससे वो बहुत ही गर्वित हो गया.
In fact, because before Ram came along, no one could defeat Ravana.
क्योंकि जब तक भगवान राम नहीं आए थे युद्ध के लिए, इससे पहले कोई भी रावण को नहीं पराजित कर सका था. और इससे उसका जो झूठा अहंकार था वो बहुत बढ़ गया. लेकिन यहाँ भगवान राम बता रहे हैं.
He says, "Today, I, whose attempt never fails, shall punish you."
भगवान कह रहे हैं, आज मैं तुम्हें दंड दूंगा क्योंकि मेरा वार कभी खाली नहीं जाता.
So he's bragging, well, he can do that because he can do anything. God can do anything, so he can also brag.
तो जैसा कि भगवान यहाँ पर अपनी बड़ाई कर रहे हैं, और भगवान ऐसा कर भी सकते हैं अपनी बड़ाई क्योंकि वो कुछ भी कर सकते हैं.
The Krishna book describes when Krishna Balaram were in Mathura.
और जैसे कि वर्णन आता है जब कृष्ण बलराम मथुरा में थे और काल्यवन हमला कर रहा था मथुरा पर, और दूसरी तरफ से भी कई लाखों करोड़ों सैनिकों से भी आक्रमण हुआ था मथुरा पर, तो कृष्ण बलराम ने बिल्कुल भी चिंता नहीं की सैनिकों की.
Krishna book describes that the two of them alone as the best heroes in the creation.
और कृष्ण पुस्तक में वर्णन आता है कि कृष्ण बलराम जो इस पूरी सृष्टि के सबसे अच्छे योद्धा हैं.
And they blackened the sky with their arrows.
देखा?
The sky became dark from the.
तो इतने सैनिक थे कि तीरों से पूरा आसमान काला हो गया.
From the massive shower of arrows.
क्योंकि बहुत सारे बाणों की वर्षा हुई थी, और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कृष्ण बलराम तीरों की इतनी तेजी से वर्षा कर रहे थे कि पूरा आसमान काला हो गया.
So we have to understand that Krishna is Parameshwara.
तो हमें ये समझना होगा कि भगवान श्री कृष्ण परमेश्वर हैं,
Supreme Mystic.
परम योगी हैं,
Supreme Controller and Supreme Mystic.
सुप्रीम कंट्रोलर,
सुप्रीम कंट्रोलर एंड द सुप्रीम मिस्टिक.
तो वो परम नियंता है और परम योगी हैं.
एज द सुप्रीम मिस्टिक इज कॉल्ड योगेश्वर.
और परम योगी के रूप में उन्हें योगेश्वर कहा जाता है.
सो नाउडेज यू कैन गो टू अ स्पोर्ट्स शॉप एंड यू कैन बाय एन एक्सपेंसिव बो.
और आज आप किसी जो जहां पर खेलकूद का सामान मिलता है ऐसी दुकान पर जा सकते हैं और एक बहुत ही महंगा धनुष खरीद सकते हैं.
There are probably bows in this world you pay half a lakh for.
और इस सृष्टि में कुछ ऐसे धनुष होंगे जो कुछ लाखों
and arrows, top of the line arrows.
कुछ लाखों रुपए के पड़ेंगे.
But they can't do what the arrows of the Supreme Personality of God can do.
लेकिन ये सभी बाण और धनुष वो कार्य नहीं कर सकते जो भगवान श्री कृष्ण के धनुष बाण करते हैं.
Because the arrows of the Supreme Personality of God are not mundane.
क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के जो धनुष बाण है वो कोई भौतिक चीज नहीं है. वे इस भौतिक प्रकृति की सृष्टि नहीं है.
So then how could they possibly be compared to something coming from the material energy? How could they possibly be compared to anything coming from the material energy because they're spiritual?
क्योंकि भगवान पूरी तरह से आध्यात्मिक हैं, तो उनके धनुष बाण भी हम तुलना नहीं कर सकते कि वे किसी भौतिक प्रकृति से बने होंगे. जैसा कि ये जो बिल्डिंग है ये भौतिक दिखती है क्योंकि ये ईंट, स्टील और रोड़ी से बना हुआ है. लेकिन वास्तविकता में ये बिल्डिंग आध्यात्मिक है.
It's not different from the abode of the Lord. It is the abode of the Lord.
और यह भगवान के धाम से भिन्न नहीं है. यह भगवान का ही धाम है.
You want to become Krishna conscious, you should practice this meditation.
और अगर आप कृष्ण भावना भावित होना चाहते हैं तो आपको भी यह ध्यान लगाना आना चाहिए.
This is God's palace.
आपको यह अभ्यास करना चाहिए कि यह भगवान का महल है.
We should maintain it very nicely.
और इसीलिए क्योंकि यह भगवान का महल है हमें इसे बहुत अच्छे से रखरखाव करना चाहिए.
We should do everything first class.
हमें हर चीज प्रथम श्रेणी की करनी चाहिए.
Because it's the abode of the Lord, God's palace.
क्योंकि यह भगवान का धाम है, भगवान का महल है.
This is called Krishna consciousness.
और यही कृष्ण भावना मृत है.
We have to get away from the mundane conception.
हमें भौतिक धारणाओं से ऊपर उठना है.
Away from the body concept if we want to advance.
हमें शारीरिक धारणाओं को छोड़ करके भगवान की ओर बढ़ना है.
हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे.
Any questions or comments?
किन्हीं के कोई प्रश्न या टिप्पणी है?
Yes.
If we want to advance in Krishna consciousness, we have to rise above the bodily concept of life. Then how is it possible?
The entire process of Vairi Bhakti. Repeat the question in Hindi.
तो परमवीर प्रभु का प्रश्न है कि अगर हमें कृष्ण भावना भावित होना है तो हमें शारीरिक स्तर से ऊपर उठना होगा, तो यह कैसे किया जा सकता है?
The entire process of Vairi Bhakti is to help us get out of the bodily concept.
तो वैदी भक्ति, वैदी साधना भक्ति हमें शारीरिक स्तर से ऊपर उठाती है.
It is encapsulated by Mahaprabhu himself in Shikshastika. The answer to your question is Shikshastika.
और शिक्षाष्टकम में महाप्रभु ने, चैतन्य महाप्रभु ने इसे बताया भी है.
Everyone, Jayatudarpanamarjanam
Bhavamahadavagni Nirvapanam Shreya Kairava Chandrika Vitaranam Vidyavadu Jeevanam Anandambadivardhanam Pratipadam Purnamrita Swadhanam Sarvatma Snapanam Param Vijayate Shri Krishna Sankirtanam.
So this is the washing process.
तो यही धुलाई करने की विधि है.
Just like if somebody has diabetes, they have to take the insulin shot.
तो अगर किसी को डायबिटीज है तो उसे इंसुलिन दवाई के इंजेक्शंस लेने. तो अगर आपको कोई बीमारी है तो आपको उसके लिए औषधि लेनी होती है. तो वैदी साधना भक्ति है जो कि शारीरिक स्तर से हमें ऊपर
उठाती है. The more we have a chance of getting on the bodily concept.
तो जितना हम अर्चा विग्रहों का दर्शन करने करते हैं, जितना हम शास्त्रों का पठन करते हैं, जितना हम भगवान के नामों का कीर्तन करते हैं, उतना हम शारीरिक स्तर से ऊपर उठते हैं.
And executing as many as possible of the nine processes of devotional service.
और नवविध भक्ति का जितना अधिक से अधिक पालन कर सकें.
श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पारसेवनम दास्यम साक्यम आत्मनिवेदनम. So we have to try to practice these nine processes.
तो हमें नवविध भक्ति जो है, श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवन अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम.
Prabhupada makes a very liberal statement in his purport to that song, Bhajan.
तो इस भजन में, भजन का जो तात्पर्य देते हुए प्रभुपाद बताते हैं.
He counts down. You can do nine of them, eight of them, seven, six. But if you can do even only one of the nine processes, you can be successful in self-realization.
तो प्रभुपाद उसके तात्पर्य में बताते हैं, कोई अगर नौ के नौ कर सके, कोई आठ, सात, छः, इस तरह से प्रभुपाद बताते हैं कि अगर एक में भी हम अच्छे से करते हैं तो हम आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर सकते हैं.
So in Bhagavad Gita, Krishna says, "Yetam mam prabhajante tam sadavajamiham." All of them as they surrender to me are rewarded accordingly.
जैसा कि भगवत गीता में भगवान बताते हैं कि जो ये अथा माम प्रपद्यन्ते, जो मेरे प्रति जिस भाव से शरणागत होता है उसी तरह से मैं उसे. तो हम भी शारीरिक स्तर से ऊपर उठ सकते हैं.
There are instances where somebody might be a 25-year devotee.
और कई ऐसे भी घटनाएं हैं कि कोई 25 वर्षों से भक्त है.
But their progress is very slow. They remain in the bodily concept. After decades of chanting Hare Krishna, well, how is this possible?
दशकों तक भगवान हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने के बाद भी कोई शारीरिक धारणा में ही है, ये कैसे संभव है?
Death offense to the holy name is the answer.
और इसका उत्तर है कि दस अपराध हरि नाम प्रभु के प्रति.
Trying to do so many things for aham ishwara aham bogi, this is demoniac, this is the mentality of the demons, but as devotees we may maintain that mentality.
तो विशेषकर दसवां अपराध जो कि कहता है कि अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए प्रयास करना, अर्थात कि अपने आप को भोगी मानना, इससे कोई शारीरिक स्तर से ऊपर नहीं उठ पाता है.
भागवत calls it ग्रंथि, ग्रंथि.
भागवतम इसे ग्रंथि कहता है.
ग्रंथि means a knot.
ग्रंथि का अर्थ है गांठ.
The hard knot in the heart.
एक ऐसी गांठ जो हृदय में है, बहुत ही कठोर गांठ.
So we have to, Bhagavad advises to cut this hard knot with a sword of knowledge.
तो भागवतम हमें ये ज्ञान देती है कि हमें ज्ञान की तलवार से इसे काट देना चाहिए.
We receive this knowledge through the Shravanam process.
और हम ये ज्ञान प्राप्त करते हैं श्रवण विधि से.
Either by oral reception or by reading.
या तो कानों से सुन करके या फिर पठन करके.
So this is the medicine. Vaidhi bhakti is the medicine.
तो वैधि भक्ति वो औषधि है.
But we have to actually know what the goal is, and we have to want the desired goal.
तो हमें लक्ष्य को जानना होगा और उसके लक्ष्य को प्राप्त करने की इच्छा रखनी होगी.
If you want something, if you have a strong desire for something material, you can get that out of Krishna consciousness.
अगर आपकी कोई बहुत ही मजबूत भौतिक इच्छा है तो वो भी आप कृष्ण भावनामृत से प्राप्त कर सकते हैं.
You want power, you want money, you want participant position, you can get it in Krishna consciousness while you're chanting Hare Krishna.
तो आपको शक्ति चाहिए, आपको बल चाहिए, आपको धन चाहिए, तो आप हरे कृष्ण महामंत्र के जप से प्राप्त कर सकते हो.
With that kind of granthi, that kind of knot in the heart will slow you down. It's very risky.
लेकिन इससे वो गांठ बढ़ जाएगी और आपकी भक्ति में कमी आ जाएगी.
Because all your friends and god brothers, god sisters, and other devotees who are not so attached to position and power and all that.
क्योंकि आपके साथ के जो आपके गुरु भाई या बहन हैं, वे जिनके हृदय में ऐसी कोई भौतिक इच्छाएं नहीं है, ऐसी गांठ नहीं है.
They may go by the thousands back to home, back to Godhead.
और वो वापस भगवत धाम चले जाएंगे.
But if you keep this grunt, if you keep the knot in the heart, then you may have to stay. You can become Indra. You're qualified.
लेकिन आपके हृदय में अगर वो भौतिक इच्छाओं की गांठ है तो आप यहीं रह जाएंगे, आप भले इंद्र बन सकते हैं.
Anyone who is chanting Hare Krishna is qualified to become Indra.
तो कोई भी जो कोई भी हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहा है वो योग्यता रखता है कि वो
इंद्र. That is, wouldn't take very much to qualify the sukriti, the amount of pious activities, become an Indra. There's a need. The positions are open.
तो कोई भी भक्त जो कि हरे कृष्ण महामंत्र का जब कीर्तन करता है तो वो योग्यता अर्जित कर लेता है कि वो इंद्र बन सकता है.
So I'm careful. If I'm careless and I don't see the knot, if I don't see how I'm tying myself down with the knot, then of material attachment, bodily concept. If I can't see that and be honest about it, then I may stay in the material world for 14,300,000,000,000 years.
तो अगर मैं अपनी उस गांठ को नहीं देखता हूँ, तो मुझे करोड़ों अरबों वर्षों तक इस भौतिक जगत में रहना पड़ेगा.
In the meantime, the sincere devotees, my friends, my god brothers, god sisters, they may all go back to home, back to Godhead, while I rot in the material world with some big position as a deva is available.
तो वहीं मेरे गुरु भाई गुरु बहन वे सभी भगवत धाम चले जाएंगे, लेकिन मैं इस बड़ी पोजीशन बड़ी बड़े सम्मान के लिए यहीं इस भौतिक जगत में रह जाऊंगा.
We don't understand the power of chanting Hare Krishna. We really don't.
हम लोग ये नहीं जानते कि हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने में कितनी शक्ति है.
It's a desire tree.
ये कल्प वृक्ष है.
Chanting Hare Krishna can fulfill your material desires as well as your spiritual desires.
तो हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना ये आपकी भौतिक और आध्यात्मिक दोनों इच्छाओं की पूर्ति कर सकता है.
Sukriti means a pious results, massive from chanting Hare Krishna.
तो आपको बहुत सुकृति भी मिलती है, बहुत पुण्य आप कमाते हैं हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने से.
In the Namamrita alone, there are so many statements out, but just by chanting Hare Krishna is more powerful than 100,000 Ashwamedha jagnas.
तो नामामृत पुस्तक में ये वर्णन आता है कि हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना सैकड़ों हजारों अश्वमेध यज्ञ करने से ज्यादा फलदायी है.
Four sacrifices in the days of yore that were done by great kings.
तो जैसा कि अश्वमेध यज्ञ पहले किए जाते थे बड़े बड़े राजाओं द्वारा.
But by chanting Hare Krishna, you get even better benefit than that.
लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने से आपको उससे भी ऊंचे फल प्राप्त होते हैं.
So we have to watch what we desire.
तो इसलिए हमें ये ध्यान रखना होगा कि हम किस प्रकार की इच्छाएं करते हैं.
If we desire in the wrong way, Krishna may fulfill those desires.
तो अगर हम गलत प्रकार की इच्छाएं रखेंगे, भौतिक इच्छाएं रखेंगे, तो भगवान वो भी पूरी कर सकते हैं.
Classic example is Dhruva Maharaj.
और इसका बहुत ही सटीक उदाहरण आता है ध्रुव महाराज का.
He wanted a position greater than that of Indra and greater than that of Brahma.
तो जैसे कि ध्रुव महाराज जो ब्रह्मा जी से भी ऊंचा स्थिति चाहते थे.
Oh, but it's not possible you can have a bigger position than Brahma. He's chief executive officer of the universe. How you can get bigger than that?
तो ब्रह्मा से ऊंचे आप कैसे हो सकते हो? ब्रह्मा पूरे ब्रह्मांड के सर्वोच्च अधिकारी
हैं. Well, he started his path of civilization, all his tapasya. He started because he wanted a position bigger than that of Lord Brahma.
तो उन्होंने इतनी ध्रुव महाराज ने इतनी तपस्या की क्योंकि वे ब्रह्मा जी से भी ऊंचा स्थिति चाहते थे.
That's why he was doing all the austerities.
और इसीलिए वो तपस्या कर रहे थे.
Extreme pranayam.
बहुत ही कठोर प्राणायाम.
He was breathing, and when he would breathe in, it was sucking all the air out of the universe.
और वो जब श्वास लेते थे तो वो पूरे ब्रह्मांड की वायु को अंदर खींच लेते थे.
Even the devas could not tolerate his austerity.
यहाँ तक कि देवता भी उनकी इस तपस्या को नहीं बर्दाश्त कर पा रहे.
They had approached Lord Vishnu.
उन्हें भगवान विष्णु के पास जाना पड़ा.
You please go see what that boy wants. Go see what he wants. We can't breathe. He's taking all the air out of the universe. Please go see what he wants.
तो सभी देवता भगवान विष्णु के पास गए और उन्होंने कहा कि आप जाकर देखिए कि इस लड़के को क्या चाहिए, हम सांस भी नहीं ले पा रहे
हैं.
तो इससे पता लगता है कि देवता किस तरह से परम भगवान पर निर्भर
हैं.
तो जैसे कि ध्रुव महाराज पूरा ब्रह्मांड की हवा ले रहे थे तो वो देवता भी श्वास नहीं ले पा रहे थे.
So when he finally, after having his darshan of Lord Vishnu, he made a famous statement, I was seeking broken glass.
तो जब ध्रुव महाराज को भगवान विष्णु के दर्शन हुए तो उन्होंने बहुत ही प्रसिद्ध उक्ति
की.
उन्होंने कहा कि मैं कांच के टुकड़ों को ढूंढ रहा था लेकिन मुझे बहुत महंगा हीरा मिल गया.
In your lotus feet.
आपके चरण कमलों के रूप में.
In a purport, Prabhupada points out, be careful what you desire.
और उसके श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद
कहते हैं. Krishna might choose to fulfill your desire.
तो प्रभुपाद वहाँ पर बताते हैं कि आपको बहुत सतर्क रहना चाहिए कि आप कैसी इच्छाएं रखते हैं.
It's a big, big material desire. It might cost you heavy. It might cost you so many births in the material world. If you have a big, big material desire, you've got the security to support it. Pious activity to support it by chanting Hare Krishna and by deity worship and all these things. You've got sufficient security to support.
तो आपको जो सुकृति मिलती है, आपको जो सुकृति मिलती है कृष्ण भावनामृत के अभ्यास से, भगवान के अर्चा विग्रहों की सेवा से, तो हो सकता है अगर भौतिक इच्छाएं होंगी तो आपको कई कई जन्मों तक इस ब्रह्मांड में रहना पड़ेगा, इस भौतिक जगत में रहना
पड़ेगा.
तो इसलिए हमें बहुत सतर्क रहना चाहिए कि हम किस प्रकार की इच्छाएं करते हैं. तो इसलिए ध्रुव महाराज बहुत ही सतर्क थे.
All those material desires.
तो इसलिए जब उन्हें भगवान विष्णु के दर्शन हुए तो उन्होंने सभी भौतिक इच्छाएं छोड़ दी.
But in the purport to the story, Prabhupada points out, but Lord Vishnu may insist on fulfilling those desires even if you don't have them anymore.
तो लेकिन इस कथा के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि भले आपकी भौतिक इच्छाएं नहीं हो लेकिन भगवान विष्णु आपको बल पूर्वक कहेंगे कि आप भौतिक इच्छाएं मांगिए मुझसे.
Dhruva Maharaj wanted that which is impossible, a position bigger than Lord Brahma.
तो जैसा कि ध्रुव महाराज को ब्रह्मा जी से भी ऊंचा पद चाहिए था.
So he was appointed to become emperor of Swetadvip.
तो इसलिए उन्हें ये उन्हें राजा बनाया गया श्वेत द्वीप का.
That is the planet of Lord Vishnu.
जो कि भगवान विष्णु का ग्रह है.
Surrounded by the ocean of milk.
जो कि दूध के सागर से शीर सागर से घिरा हुआ है.
It's a spiritual world.
ये आध्यात्मिक लोक है.
Not subject to destruction at the time of the destruction of the universe. That planet does not become destroyed. It is Vaikunth planet.
तो ये एक वैकुंठ लोक है जो कि ब्रह्मांड के विनाश होने पर भी विनाश नहीं होता है.
The pole star.
जिसे कि ध्रुव लोक भी कहते हैं.
Is Dhruvaloka.
ध्रुव लोक.
That's where Dhruva resides. So he's the emperor up there, although he's working under the guidance of Lord Vishnu.
वहाँ पर सम्राट उस ध्रुव लोक के ध्रुव हैं जो कि भगवान विष्णु के अधीन कार्य कर रहे हैं.
So such big big position.
तो इस तरह की बड़ी बड़ी पद भी मिल सकते हैं.
So he's going to remain there indefinitely.
और वो वहाँ पर अनंत समय तक रहने वाले हैं.
And the story of Bali Maharaj is also significant.
बलि महाराज की कथा भी बहुत महत्वपूर्ण है.
Bali Maharaj was trying to conquer the not trying he succeeded in king, conquering the kingdom of Indra, the king of heaven.
तो बलि महाराज इंद्र का जो लोक था उसे जीत पाए थे.
So then, and the Bhagavatam explains, then the future Bali Maharaj will have to become Indra.
तो इसलिए
he'll be the next Indra.
इसलिए भागवतम में वर्णन आता है कि अगले जन्म में बलि महाराज अगले इंद्र बनेंगे.
This is what Bhagavat says.
यह भागवतम में वर्णित है.
Do you remember?
Yes, Maharaj.
He will become the next Indra.
In the next Manvantar.
He'll be Indra.
तो अगले मनवंतर में बलि महाराज इंद्र होंगे.
Well, all you little devotees sitting here will be back to home, back to Godhead by the mercy of Prabhupada and his representatives.
Yeah.
And Bali Maharaj is stuck being Indra.
तो
आप power of Prabhupada, try to understand. That's the power of Srila Prabhupada.
आप सभी भक्त तब तक प्रभुपाद जी की कृपा से और उनके प्रतिनिधियों की कृपा से वापस भगवत धाम जा चुके होंगे लेकिन बलि महाराज को यहीं अटकना होगा और अगले मनवंतर में भी इंद्र बनना होगा.
So we have to be careful what we desire.
तो इसलिए हमें बहुत सतर्क रहना चाहिए कि हम क्या इच्छा रखते हैं.
Okay, thank you very much. Jagguru, Sri Prabhupada,
Jai.
Jai.
हरि हरि बोल. परम पूजनीय भक्ति माधुरी गोविंद गोस्वामी महाराज की जय.